कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढू कहाँ, तुम्हें खोजू कहाँ। तुम्हें ढूंढू कहाँ, तुम्हें खोजू कहाँ। अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा। ये कांटों भरी डगर है, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।
शांति। एक अत्यंत दुखी उदास व्यक्ति, जो कि बहुत धनवान था, सुख नहीं था, शांति नहीं थी, बाकी सब कुछ था, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, संबंध, पद, प्रतिष्ठा, परंतु जीवन अस्वस्थ था। अंतस में शांति की वो सरिता कभी नहीं बही। ऐसे दुखी चित्त को लेकर वो एक ज्ञानी पुरुष के पास पहुंचा और उससे पूछता है कि मुझे शांति कैसे मिले। जीवन का ये जो संघर्ष है, जीवन की ये जो अशांति है, जीवन की ये जो आपाधापी है, उसमें ये जो तनाव है, ये जो संताप है, इस संताप से, इस पीड़ा से, इस दर्द से मैं कैसे छूटूं। वो ज्ञानी व्यक्ति उसे कहता है, मैंने सुना है एक आचार्य है और वो गीता का बहुत अच्छा पाठ करते हैं और मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर उनके पास है। तो वो धनवान दुखी व्यक्ति उस आचार्य के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैंने सुना है आप गीता का पाठ करते हो, मैं भी सुनना चाहता हूं, मैं भी समझना चाहता हूं, क्या है वो? तो वह आचार्य कहते हैं बहुत अच्छा, परंतु इसके लिए तुम्हें 3 मास देने पड़ेंगे क्योंकि गीता में कुल 18 अध्याय है, उन 18 अध्याय को समझने के लिए कम से कम 3 मास तो लगेंगे। वो व्यक्ति कहता है 3 मास तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतना समय कहाँ है। कोई और विकल्प? तो वो आचार्य कहते हैं चलो ठीक है, ये जो 18 अध्याय है इनका सारा सार 18वें अध्याय में है, तो मैं तुम्हें केवल 18वां अध्याय सिखाता हूं, पर उसके लिए भी 2 हफ्ते लगेंगे। तो वो व्यक्ति कहता है 2 हफ्ता तो बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ इंस्टेंट बताओ जिससे फटाफट हो जाए काम, इतना समय मैं नहीं दे सकता, 2 हफ्ता बहुत ज्यादा है। वो आचार्य कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3रा विकल्प देता हूं। उस 18वें अध्याय में एक श्लोक है, अगर वो एक श्लोक भी तुम याद कर लो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, ये जो चिंता है जीवन में वो मिट जाएगी। और वो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापोऽप्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो वो व्यक्ति कहता है ये इतना बड़ा श्लोक मुझसे याद नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा है, पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे ये याद करते करते, मुझे तो शांति चाहिए और वो भी अभी चाहिए, कोई दूसरा इसमें कुछ है तो बताओ। तो आचार्य कहते हैं कि इस श्लोक में एक वाक्य है मा शुच, बस तुम इतना भी याद कर लो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। वो व्यक्ति कहता है ये मा शुच क्या होता है? तो गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं इसका अर्थ है चिंता मत करो, बस इतना याद कर लो। तो वो कहता है चिंता मत करो ये तो मुझे पता है, पर कैसे, वो तो पता ही नहीं। आचार्य कहते हैं इसलिए तो केवल एक शब्द से नहीं होगा, ये समझने के लिए ही तुम्हें पूरा अध्ययन करना होगा शुरू से लेकर अंत तक, तब कहीं जाकर शायद उस व्यक्ति के ये बात समझ में आई नहीं आई पता नहीं, परंतु अध्यात्म के इस मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं, शनि शनि धीरे धीरे इस ज्ञान को आत्मसात करना होता है, क्योंकि जीवन में चिंताएं इतनी ज्यादा है और उन चिंताओं में इतना व्यक्ति डूबा है कि एक धक से वो शायद न निकल पाए। जैसे कि एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा अपना घर हो, कब तक इस किराए के घर में रहूंगा, बहुत धन कमाता है, बहुत भागदौड़ करता है और इस भागम भाग में 10 साल गुजर जाते हैं और 10 साल के बाद अपना एक घर बनता है। लक्ष्य था कि मेरा अपना घर हो जिसमें मैं सुख और चैन से रह सकूं अपने परिवार के साथ, और इसी लक्ष्य हेतु भागदौड़, दिन रात भागना, और वो 10 साल बिता दिए, 10 साल गुजर गए, अब घर तैयार है, अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई दुख नहीं है, अब सुख चैन की जिंदगी है। परंतु जैसे ही घर में जाता है दस साल के बेचैने की संस्कार आदत अब भी साथ में है। घर तो है परंतु चिंता करने की आदत और दुखी होने की आदत और भागम भाग करने की आदत अब साथ साथ चल रही है, तो अभी भी वही है जहां वो पहले था। क्या किया जाए, कैसे इस ज्ञान को समझा जाए, कैसे इस भटकते मन को स्थिर किया जाए? ऐसा ही एक प्रश्न कृष्ण से कभी अर्जुन पूछता है गीता में, चंचलम मन कृष्ण, मैं क्या करूं, मन बहुत चंचल है, कैसे इसे वश में करूं? इस मन को वश में करना अर्थात इस हवा को वश में करने जैसा है, असंभव सा कार्य है। और गीता में ही उत्तर भी है, वैराग्येन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च कुह्यते। अभ्यास और वैराग से इस मन को वश में किया जा सकता है। तो आज के सत्र में हम अपने आप को तैयार करके बैठेंगे और जीवन के कुछ रहस्यों की चर्चा करेंगे, किस ओर हमारा जीवन जा रहा है, क्या जिस दिशा में और दशा में हम खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं वही सही है कि जीवन का कोई और एक मार्ग भी है? और जैसे बताया, भगवद गीता जिसे महात्मा गांधी ने कहा था स्पिरिचुअल डिक्शनरी है, इस गीता में ऐसे बहुत से रहस्य है, राज है, जिनकी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो ये कि वास्तविक गीता है क्या, इससे पहले कि हम चर्चा चालू करें एक और उदाहरण। विदेश में एक बहुत बड़ा इतिहासकार कभी हुआ था, एडमंड बर्क हिस्टोरियन, जिसने ये संकल्प किया कि मनुष्य जाति का जो भी इतिहास है वो मुझे लिखना है, और उसने वो सारा इतिहास लिखना चालू किया। 30 साल बिताए मनुष्य जाति का इतिहास लिखने में, जीसस क्राइस्ट ने क्या किया था, बुद्ध ने क्या किया था, ईसा मसीह, मूसा ने क्या किया था, गुरु नानक ने क्या किया था, मोहम्मद ने क्या किया था, कौन सा धर्म, कौन सा लीडर कब कहां हुआ था, कौन कौन सी क्रांतियां किस किस देश में कब कब आई थी, सब कुछ लिखना चालू किया। और ये लिखते लिखते 30 साल बीत गए, और एक रात वो अपने कमरे में बैठकर लिख ही रहा था, तब अचानक आवाज आई, जैसे उसके घर के बाहर पीछे कुछ हुआ है, कोई हलचल, कोई आवाज। वो उठ के जाता है, देखता है क्या हुआ, एक व्यक्ति को खून हो गया है, एक व्यक्ति को मार दिया गया है, चाकू छाती में गड़ा हुआ है, लोगों की भीड़ जमी हुई है, अभी कोई किसी ने मारा है और अभी कोई भाग गया है उसे। एडमंड बर्क जाके पूछता है क्या हुआ, क्या हुआ, यह घटना अभी हुई है, सारे के सारे चश्मदीद गवाह है, परंतु हर एक व्यक्ति अलग अलग बात बताता है। कोई कहता है इसने खुदकुशी कर ली, कोई कहता है इसको किसी ने मार दिया, कोई कहता है ये अपघात था, कोई कहता है सुसाइड, कोई कहता है होमिसाइड, कोई कुछ। उसे आश्चर्य होता है कि जो घटना यहां सबके सामने घटी उसमें इतने सारे मत, फिर वास्तविकता है क्या? और वो वापस अपने कमरे में आता है और सोचता है, मैंने ये सारा जो इतिहास लिखा जो हजारों वर्ष पुराना है, अगर ये घटना जो अभी मेरे आंखों के सामने हो रही है उसके बारे में इतने मत है, तो इतने हजारों वर्ष हुई जो घटना है वो और अभी कितना अंतर होगा, कितनी सारी बातें उसमें ऐड कर दी गई होगी, कितनी सारी बातें उसमें से निकाल दी गई होगी। इसका अर्थ कि मैंने जो कुछ लिखा वो सब कुछ व्यर्थ है। और वो आता है और अपना सारा वर्क जो कुछ उसने किया था सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है। अंग्रेजी में कहते हैं चाइनीज विस्पर्स, एक गेम है। एक व्यक्ति दूसरे के कान में कुछ कहता है, दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के, ऐसी पूरी लाइन लगाते हैं। एक कहानी एक को सुनाई जाती है, वो कहानी जब दसवें तक पहुंचती है पूरी बदल जाती है। कहानी में बकरी थी, वो बंदर बन जाता है वहां पहुंचते पहुंचते। एक कान से दूसरे कान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, अगर ये इन चीजों का ऐसा हो रहा है तो जो भी शास्त्र संसार में आए उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा। कहां तक माने कि वो शास्त्र सत्य है। कहा जाता है वेद जो है वो अपौरुषीय है, किसी ने लिखे नहीं है, प्रकट हुए हैं। वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या, असत्य क्या, सार क्या, असार क्या, जो भी शास्त्र संसार में उपलब्ध है उनमें सत्यता कितनी है, क्योंकि वो हजारों साल पहले की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके बीच में कोई आया, उसने अपना कोई एक श्लोक उसमें डाल दिया। ये भी हो सकता है, यह हो सकता है पूरा अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इसलिए कहां तक उसको माने, सत्य ज्ञान क्या है, सत्य शास्त्र कौन सा है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है कि जितनी टीका और टिप्पणियां गीता पर की गई है उतनी किसी भी धर्म ग्रंथ धर्म शास्त्र पर नहीं की गई है। सबसे ज्यादा टीका गीता पर है। तो ये जो गीता है ये मुख्य शास्त्र है। शास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, युद्ध ग्रंथ कहा जाता है, हरि गीता कहा जाता है, सत्य ज्ञान कहा जाता है। परंतु इस शास्त्र में कितनी सत्यता है, इस सभा में ऐसे कितने होंगे जिन्होंने गीता पढ़ी है, हाथ खड़ा करेंगे। बहुत सारे। पाठ किया जाता है गीता का, एक बार पढ़ने से नहीं होता है, कई बार पढ़ना होता है। यहां तक कि पाश्चात्य जगत का बहुत बड़ा दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने लिखा है, उपनिषद एंड गीता आर द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड शैल बी द सोलेस ऑफ माय डेथ। ये गीता और उपनिषद मेरे जीवन का आराम है, जब भी मैं इसे पढ़ता हूं मन को शांति मिलती है। तो गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसे विश्व भर में हजारों लोगों ने उसका अध्ययन किया है, पढ़ा है, चिंतन किया है, उसका वर्णन किया है, उस पर टीका की है, उस पर प्रवचन है। अब ऐसे धर्म ग्रंथ पर कुछ भी चर्चा करना बहुत सोच समझ कर और खबरदारी से करनी होगी। और बहुत सेंसिटिव है ये टॉपिक। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, I think the man Krishna might have existed, इतना साक्षी होकर लिखा है कि मुझे लगता है शायद ये कृष्ण नाम का व्यक्ति कोई हुआ होगा। तिलक रहस्य, गीता रहस्य, लोकमान्य तिलक के उसके प्रति बहुत सारे दूसरे प्रकार के व्यू है। एक एक व्यक्ति ने इसके ऊपर लिखा है और हरेक के अपने अपने व्यू है। कोई वेदांत के रीति से लिखा है, किसी ने अद्वैत शुद्ध अद्वैत, किसने विशुद्ध अद्वैत, अलग अलग रूपों से इसको, किसी ने भक्ति के रूप से लिखा है। तो आज हम देखेंगे कि वास्तविक गीता क्या है, वास्तविक गीता ज्ञान क्या है, और जो गीता उपलब्ध है उसमें कितना सत्य है। गीता में 18 अध्याय है, ऐसी हम 18 बातें देखेंगे। सबसे पहली बात ऑथर, गीता किसने लिखी, गीता किसने गाई। सभी जानते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मर ये गीता सुनाई गई। मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, हे संजय मुझे बता मेरे और पांडु पुत्र इस समय वहां क्या कर रहे हैं। गीता का प्रथम श्लोक, कहा जाता है व्यास जी ने ये लिखा, पर इसकी गहराई में अगर जाओ तो व्यास एक सरनेम है और व्यास नाम के उस समय बहुत सारे लोग थे, कृष्ण द्वापायन व्यास एक दूसरा व्यास और बाद में बहुत सारे लेखक आए उन्होंने अपना नाम व्यास रखा, तो इसमें कितनी सत्यता है कि ये व्यास ने लिखा। और कहा जाता है कि गणेश जी को कहा तुम लिखो, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। क्या वास्तव में कोई प्रेरणा हुई, कोई साक्षात्कार हुआ, कोई दिव्य दृष्टि से वहां क्या चल रहा है और इन्होंने यहां देखा और फिर वो बाद में लिखा? अगर ऐसा है तो कुछ कुछ श्लोक जो गीता में है वो उपनिषद में पहले से कैसे आ गए? कुछ कुछ श्लोक जो गीता में है वो उपनिषदों में पहले से है। बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि इसको लिखने वाला कौन है। ऑथरशिप बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है। दूसरा है बैकग्राउंड, सेकंड पॉइंट है बैकग्राउंड। हमने सुना है कि दो पक्षों के बीच ये युद्ध हुआ और सब जानते हैं महाभारत का विस्तार, किस तरह से लाक्षाग्रह, द्रौपदी, चीरहरण, अज्ञातवास, विराट का युद्ध और उसके बाद में कृष्ण शांति दूत बनकर जा रहे और फिर सब कुछ करने के बाद भी जब युद्ध नहीं टला तो अंत में युद्ध हुआ। ये बैकग्राउंड है उसका। क्या वास्तव में ऐसा कोई युद्ध हुआ था इस संसार में जिसमें 18 अक्षयोनी सेनाएं थी? बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं यहां पर, इसका हम विस्तार फिर करेंगे। तीसरा कैरेक्टर्स, कौन कैरेक्टर्स है इसके मुख्य? एक तरफ कृष्ण है तो एक तरफ शकुनी दिखाया है, एक तरफ 5 पांडव है तो एक तरफ 100 कौरव है। और यदि इनके जीवन को देखें और इनके जन्म को देखें तो बहुत सारी मनगढ़ंत कहानी है, एक एक कौरव का जन्म कैसे हुआ। अगर वो स्टडी की जाए तो एक साइंटिफिक माइंड कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। पांडवों का जन्म कैसे हुआ, साइंटिफिक माइंड कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। बहुत सारे पाश्चात्य लोगों ने गीता पर रिसर्च किया है, अध्ययन किया है, गीता सोसाइटीज है जिस पर ये सारे मुद्दे खड़े किए जाते हैं। क्या वास्तव में ऐसा कोई युद्ध हुआ था? फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, ये युद्ध तो काल्पनिक था, ये तो मन की बात है, केवल मन में ही दो फोर्सेस है, दो सेनाएं खड़ी है जिनका निरंतर युद्ध होते रहता है। तो क्या ये कैरेक्टर्स वास्तव में सत्य है? चौथी पॉइंट है डेट। गीता कब सुनाई गई? कोई कहते हैं 5000 वर्ष पूर्व, पर बहुत सारे रिसर्चर्स ने कहा है कि 3री शताब्दी से पहले गीता का कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक स्वामी विवेकानंद ने कहा है बिफोर 18th सेंचुरी देयर वाज नो मेंशन ऑफ गीता। कई लोगों का कहना है कि शायद ये व्यास ने नहीं, शंकराचार्य ने बताई है। भारत में भक्ति की शुरुआत, कृष्ण की भक्ति बहुत बाद में चालू हुई, सबसे पहले शिव की भक्ति चालू हुई है, वो भी साउथ में, उसकी लहर फैली फिर ऊपर नॉर्थ की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जब थे तब कृष्ण का कोई मंदिर नहीं था और राधा को तो बहुत बाद में जोड़ा गया कृष्ण के साथ। शुरुआत में केवल शिवलिंग की ही पूजा दिखाई है, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक ये शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। वहां पर कोई कृष्ण का मंदिर नहीं, कोई नारायण का मंदिर नहीं। ये सब भक्ति कब चालू हुई, कैसे चालू हुई, ये सब विचारणीय, चिंतनीय विषय है। आज की ये जो क्लास है ये थोड़ी अलग प्रकार की क्लास है, आपके सूचना के लिए, नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण है। धारणाओं की जो क्लास होती है वो अलग प्रकार की होती है, पर इन ज्ञान, इस फिलॉसफी को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हृदय तो कई बार कन्विंस हो जाता है, बट व्हाट अबाउट इंटेलेक्ट? जो बुद्धिजीवी है उनको बहुत सारी इंटेलेक्चुअल चीजें चाहिए रहती है, परंतु जो भोले भाले हैं उनको इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो बस मान लेते यही सत्य है। जैसे दिखाया है चैतन्य महाप्रभु 14वीं शताब्दी भक्ति का जिन्होंने सूत्रपात किया भारत में, भक्ति की लहर फैलाई, वो जब साउथ गए एक बार देखा कि गीता का प्रवचन हो रहा है और वहां पर एक व्यक्ति बैठा है जो अनपढ़ है और वो जो प्रवचन हो रहा है हिंदी में हो रहा है और वो जो व्यक्ति है साउथ का उसे हिंदी नहीं आती है, वो बैठा सुन रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं तुम क्यों रो रहे हो, तुमको कुछ समझ में आ रहा है वहां क्या हो रहा है, तुमको हिंदी समझ में आती है? वो कहता है मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है। फिर रो क्यों रहे हो? वो कहता है कि मैं बस इतना देख रहा हूं कि रथ है, कृष्ण है, अर्जुन है और गीता सुनाई जा रही है, बस इतना देखकर ही मुझे आंसू आ रहे हैं। ये भावुक मन है, परंतु सबकी दशा ऐसी नहीं होती है। हमारे अंदर एक तर्क बुद्धि भी है जो हर चीज को तौलना चाहती है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको इस संस्था में आप यहां आ गए तो यहां पर जितनी बातें सुनाई जाए सब कुछ मान लो, बिल्कुल नहीं मानना। खुद रिसर्च करो, खुद सोचो, खुद मांग समझो ये क्या है। यहां पर बताया जाएगा परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, ये चक्र ऐसा है, ये चक्र वैसा है, ऐसे जन्म होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज यू हैव हर्ड इट समवेयर, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन स्क्रिप्चर, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशन, फाइंड द ट्रुथ यूअरसेल्फ। इसलिए विश्वास नहीं करो कि बहुत सम्माननीय किसी व्यक्ति ने कह दिया, इसलिए विश्वास मत करो किसी शास्त्र में लिखा है, इसलिए विश्वास मत करो किसी अवतार ने, किसी शंकराचार्य ने, किसी महान पुरुष ने, किसी ईश्वर पुत्र ने, किसी पयंबर ने, किसी पैगंबर ने, किसी बुद्ध पुरुष ने, किसी धर्म स्थापक ने यह कह दिया। इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि परंपरा से चालू आ रहा है। क्यों कर रहे हैं? परंपरा है, किसी को पता नहीं क्यों कर रहे, बस किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। पूछो क्यों कर रहे, किसी को कोई खबर नहीं है क्यों कर रहे। ज्ञान को यदि प्राप्त करना है, अर्जुन बनना है, अर्जन करना है यदि ज्ञान का, तो खुद तलाश करनी पड़ेगी ये सत्य क्या है, असत्य क्या है। और धर्म की परिभाषा एक ही शब्द में है, कभी रिलीजन इज रियलाइजेशन, बस। धर्म अर्थात अनुभूति, धर्म अर्थात शास्त्र नहीं, धर्म अर्थात प्रवचन नहीं, धर्म अर्थात कोई तीर्थ यात्रा नहीं, कि तीर्थ स्थान नहीं, गुरु की शरण नहीं, धर्म अर्थात अनुभूति। जब तक अनुभव ना हो तब तक रुकना नहीं है, और आगे और आगे और आगे। किसी सूफी संत को कभी किसी ने पूछा था अध्यात्म अर्थात क्या, वो कहता है रिलीजन स्पिरिचुअलिटी मीन्स एंड अगेन एंड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर, और आगे और आगे और आगे, रुकना कहीं पर भी नहीं है जब तक संपूर्ण सत्य को ना पाले। और आत्मा की प्यास अनंत की है, इस संसार के कोई भी भोग विलास आत्मा को कभी भी तृप्त नहीं कर सकते। सब कुछ मिल जाए, धन ऐश्वर्य संपत्ति, इस संसार का कुछ भी मिल जाए, कितने भी अच्छे संबंध हो, कितना भी पद पोजीशन हो, परंतु जब तक अनंत को अनंत ना मिले प्यास नहीं मिटेगी। अनंत की प्यास अनंत की है, आत्मा की प्यास उस परमात्मा की है, सत्य ज्ञान की है। जब तक उस सत्य ज्ञान तक नहीं पहुंचती चेतना, तब तक अतृप्त रहेगी, दुखी रहेगी, संसार में खालीपन रहेगा। सब कुछ है परंतु रिक्तता है अंदर, अज्ञात सा दुख है, अज्ञात सा भय है, पीड़ा है, दर्द है, कौन सी पता नहीं। इसीलिए सत्य को हर एक को स्वयं ढूंढना पड़ेगा। उधार का चिंतन और उधार की फिलॉसफी हमने बहुत सीख ली, सुन ली, अब खुद इस मार्ग पर आगे जाओ। एकला चालू रे, अकेले ही बढ़ना पड़ेगा। इट्स द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक प्लोटिनियस ने कहा कभी, ये उड़ान है अकेले की तरफ, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। कोई साथ में नहीं आएगा, ना पति ना पत्नी ना बच्चे, ये मार्ग अकेले को ही हर एक को निकलता है इसके ऊपर। जो दिखाई दे रहा है, ये मेरा वो मेरा, ये भ्रम है। इसके लिए गीता की शुरुआत ही है मामका पांडवश्चैव, ये मेरे धृतराष्ट्र मोह से व्याधि, मोह की व्याधि से पीड़ित है। कहता है मेरे मेरे बच्चे और पांडव के पांडु के पुत्रों में क्या हो रहा है, ये जो मेरे हैं यही दुख का कारण है। एक उदाहरण है महाभारत में, धृतराष्ट्र पूछता है क्या मेरा दुर्योधन के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। वो कहता है कि यदि आपने मुझे राज्य नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो क्या मैं पिता होने के मैं पिता हूं, क्या मैं उसे आत्महत्या करने दूं? विदुर क्या करूं मैं बताओ, क्या मैं अपने बेटे को दुखी कर दूं? क्या दुर्योधन के प्रति मेरा कोई दायित्व नहीं है? विदुर कहता है महाराज दुर्योधन आपका दायित्व नहीं, आपका रोग है। और शायद हमने भी जिसको मेरा अपना कह रखा है वो हमारा रोग है। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त हमारा कोई भी सगा नहीं है। भ्रम मात्र है और यही गीता का ज्ञान है। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, अर्जुन कहता है गत संदेह, हे गोविंद हे केशव हे माधव, मैं अब गत संदेह संदेह से परे निकल गया हूं, क्योंकि मेरा जो मोह था, मेरा जो विषाद था वो नष्ट हुआ है। तो हम बात कर रहे थे सत्य खुद ढूंढना है। माना कि जो यहां सुना रहे बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, यहां क्या संसार में कोई भी हो, फाइंड द ट्रुथ yourself, खुद ढूंढो, खुद तलाश करो, खुद गहराई में जाओ, खुद एकांत में जाओ, खुद मौन में जाओ, उस मौन के क्षणों में सत्य प्रकट होगा। भीड़ भाड़ में सत्य नहीं होता है, सत्य इतना सस्ता नहीं कि मीडिया पर बिक जाए। सत्य संघर्ष है, सत्य खोज है, और जो हर एक को अपनी करनी है। तो सबसे पहली बात बताई, ऑथर पता नहीं कौन है, बी बैकग्राउंड क्या था, सी कैरेक्टर्स कौन कौन थे, डी डेट। अगर डेट की खोज की जाए और सारा लिटरेचर पढ़ा जाए, किसी ने कहा है 8th century, किसी ने कहा 3rd century, किसी ने कहा 2nd century, किसी ने कहा पता नहीं कब सुनाई गई, किसी ने कहा ऐसा कोई महाभारत कभी हुआ ही नहीं, ये तो कपोल कल्पित कहानियां है जो गढ़ दी गई है। उसके बाद है ई इरा, इरा अर्थात किस युग में ये गाई गई। कहा जाता है कि कृष्ण ने गीता को द्वापर के अंत में गाई। क्या वास्तव में द्वापर के अंत में गाई? तो क्या भगवान जब आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान जब आते हैं धर्मस्थ संस्थापनार्थाय, क्या वो धर्म स्थापन करने आता है और द्वापर के अंत में उसने गीता गाई और तुरंत कलयुग चालू हो गया? ये कैसा युग लाया उसने कि अगर गीता अगर द्वापर के अंत में गाई गई तो उसके बाद में कलयुग आ गया? क्या यह विरोधाभास नहीं है या कुछ सत्य कुछ और है जो हमें पता ही नहीं है, और हम तो उसी को पकड़े हुए हैं, उसी को समझ रहे हैं, बस यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। जैसे एक आश्रम है, वहां पे जो गुरुदेव है वो ध्यान करने बैठते हैं, और जैसे ही ध्यान करने बैठते एक बिल्ली आती है और उनको डिस्टर्ब करती है। वो गुरु सोचता है क्या करूं मैं इस बिल्ली का, तो फिर वो एक युक्ति निकालते हैं, जब भी ध्यान करने बैठते उसके पहले बिल्ली को बांध देते हैं खंभे से 1 घंटे के लिए, ताकि ध्यान में कोई व्यवधान ना आए। ये जो गुरु है इनकी मृत्यु हो जाती है, दूसरे गुरु आते हैं। जब दूसरे गुरु आते हैं तो जो शिष्य थे जैसे ही देखा गुरु ध्यान में बैठे बिल्ली को बांध दिया, फिर बिल्ली एक बार बीमार पड़ गई और मर गई, दूसरी बिल्ली खरीद कर लाए, और जब भी गुरु ध्यान में बैठ रहे बिल्ली को बांधा जा रहा है। दूसरे गुरु भी चले गए, तीसरे गुरु भी चले गए, अभी जैसे भी उनके गुरु ध्यान में बैठते हैं, एक बिल्ली को लाया जाता है और बांधा जाता है। उनको पूछा जाता है ऐसा क्यों करते हो, वो कहते हैं परंपरा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे आश्रम की परंपरा है, किसी को पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो परंपरा बन गई है। जैसे दिखाया है महात्मा बुद्ध 6 साल तपस्या करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, शरीर जीर्ण हो जाता है, गिर पड़ते हैं। एक सुजाता नाम की महिला आती है, वो उन्हें खीर पिलाती है, उसके बाद में थोड़ी सी शक्ति आती है और फिर वो संकल्प करते हैं जब तक सत्य को नहीं पालूंगा इस स्थान से नहीं उठूंगा, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, और उसी रात संबोधि एनलाइटनमेंट होता है। ये है कहानी। अब दुनिया भर के जितने बौद्ध आश्रम है वहां पे एक नियम है, ध्यान में बैठना है पहले खीर पियो। उस खीर का और ध्यान का कोई संबंध नहीं है। क्यों कर रहे हो? परंपरा है। परंपरा चालू किसने की? कुछ पता नहीं। ऐसी ही बहुत सी परंपराएं हैं लोकलाज जो चालू है। क्यों चालू है पता नहीं। मोहम्मद गजनवी था जिसने भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ को लूट कर ले गया। गजनी में एक बार उसने देखा, जा रहा था और उसके मार्ग में एक पत्थर आ गया। उसने वो पत्थर उठाकर कहा कि इसको दूसरे मार्ग पे रख दो, उसके मार्ग पे ये पत्थर नहीं चाहिए। वो पत्थर उस मार्ग पर रखा हुआ है बीचों बीच। लोगों को बहुत कष्ट होता है पर कोई हिम्मत नहीं करता कि इस पत्थर को कैसे हटाए, क्योंकि महाराज सम्राट ने रखा है, उनके बादशाह ने रखा है। बादशाह मर गया, वो लोग मर गए, अब दूसरे लोग आ गए, दूसरा बादशाह आता है, पत्थर अभी भी रखा है। लोगों को बहुत मुश्किल होती है, इधर उधर से जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता इस पत्थर को हटाओ। क्यों हटाओ? अरे ये परंपरा से रखा हुआ है। ऐसी कितनी ही परंपराओं में हम जकड़े हुए हैं जो कि झूठ है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, तुक नहीं है कोई, परंतु हम करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, माला फेरे जा रहे फेरे जा रहे फेरे जा रहे, बुद्धि में कुछ और चल रहा है, इधर राम 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 चल रहा है, साष्टांग दंडवत किए जा रहे, मंदिरों में जाए जा रहे, क्या कुछ नहीं कर रहे। इतनी हजारों रस्म है परंतु उनका अर्थ क्या है कोई नहीं जानता, और ना ही कोई खड़ा है ये तर्क करता है या विद्रोह करता है कि मुझे बताओ ये क्यों करते हैं। बस करते हैं, तुम भी करो बस। तो किस युग में ये गीता गाई गई किसे पता नहीं, सत्य गीता कब सुनाई गई किसे भी पता नहीं है। बस यही समझते हैं कि कृष्ण ने गाई और उसके बाद में पांडवों की जीत हो गई, फिर उसके बाद में कृष्ण की भी मृत्यु हो गई, इन पांडवों भी पहाड़ों पर गल मरे, उसके बाद में परीक्षित आया, उसके बाद में युग आगे बढ़ा। और ये शास्त्र बन गए, अब इनको पढ़ते रहो, समझ में किसी को भी कुछ नहीं आ रहा है। सब लोग कहते बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विद्रोह कैसे करें। उसके बाद एफ फील्ड, कुरुक्षेत्र जिन्होंने देखा होगा, अगर वहां जाकर पड़े कोई खड़ा रहे उस ग्राउंड में, तो महाभारत में लिखा है, गीता भीष्म पर्व में आती है 22 से 14 श्लोक पूरा चैप्टर्स गीता है, टोटल 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। महाभारत का जो युद्ध हुआ, क्या वास्तव में ऐसा कोई युद्ध हुआ था? 18 अक्षयोनी सेना थी, पांडवों की 7, कौरवों की 11। क्या इतनी बड़ी सेना उस मैदान में खड़ी रह सकती है? क्योंकि एक अक्षयोनी अगर निकाला जाए तो लाखों लाखों का फिगर होता है, और वो 18 अक्षयोनी। स्टैटिस्टिक्स, कई लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लिए इसके ऊपर, देयर वाज नो सच वॉर एज महाभारत एवर फॉट। महाभारत का युद्ध तो इधर ही चल रहा है मन में, हर घर घर में महाभारत चल रहा है। ये युद्ध हमारा ही है शायद, उसके बाद है जी ज्ञान। गीता में ज्ञान सुनाया गया है, राजयोग है, कर्मयोग है, संन्यास योग, सांख्य योग, बहुत सारे ज्ञान का वर्णन है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्य सुसुकम कर्तव्यम। हे अर्जुन, मैं तुझे राजयोग सिखाता हूं। आई टीच यू द राजा, द किंग ऑफ ऑल द योगास। सुन, ये वो ज्ञान है, पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र को पवित्र करने वाला ये ज्ञान है। तो गीता ज्ञान तो सबके पास कब से है, फिर भी संसार की दुर्गति क्यों हुई? फिर गीता ज्ञान तो कब से है? द्वापर से है गीता ज्ञान, सबके पास है, अध्ययन हो रहा है, पाठ हो रहे हैं, फिर भी संसार गिरता क्यों गया? संसार की उन्नति तो हुई नहीं, पतन ही हो रहा है। वर्तमान समय जितना पतन है शायद कभी नहीं था संसार में। मन मन में विकार है, मन मन एक एक मन काम वासना से पीड़ित है। और गीता में तो किस तरह का ज्ञान है, संपूर्ण पवित्र बनने का ज्ञान है, योगी बनने का ज्ञान है। तो इतने सारे आश्रम संसार में, इतने सारे धर्म संस्थाएं, भारत में हर 100 किलोमीटर पर एक आश्रम है, या 100 किलोमीटर एक व्यक्ति की पूजा होती है। पूछो ये कौन है, तो कहते हैं ये उसके अवतार है। वो कौन है? वो उसके अवतार है। धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? और भगवान तो कहता है अधर्म जब होता है तब मैं प्रकट होता हूं। तो वो तो आया और चला गया। दूसरी एक बात, यदि कृष्ण ही भगवान है तो सारे धर्म उसको भगवान क्यों नहीं मानते? यहां तो कृष्ण के भक्त और राम के भक्तों में भी लड़ाई है। राम का भक्त यदि कृष्ण के मंदिर जाए, कृष्ण के मंदिर में तो जाते नहीं है, राम के भक्त बस राम की पूजा, शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। धर्म धर्म में कहा जाता है पूरे विश्व में 4,300 धर्म है, 4,300 रिलीजन्स एज पर वन एस्टिमेट। कहा जाता है द्वापर से अब तक पिछले 2,500 वर्ष में 15,000 युद्ध हुए हैं, और ये सारे युद्ध अधिकतर धार्मिक लोगों ने किए हैं। वो जो नास्तिकवादी है वो थोड़े कम युद्ध करते हैं। धर्म के नाम पर जितने ज्यादा युद्ध हुए और कहीं नहीं हुए हैं। तो क्या हर धर्म कहता है हमारा ही सत्य है? वो कहते हैं हमारे पास आ जाओ तुम्हें मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी, उधर जाओगे तो नर्क में जाओगे, कम टू अर्थ, हम ही सत्य है बस। हर धर्म यही कहता है, जाए कहां? कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन सा धर्म, कौन सा क्रीड, कौन सा गुरु? व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, इतने सारे धर्म, सत्य कौन सा? सत्य ज्ञान है कहां? क्या हमने जिसे ज्ञान समझा है वो ज्ञान है? शायद नहीं। उसके बाद एच फॉर हिंसा। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो लिया गया है गीता के लिए वो ये है कि भगवान हिंसक युद्ध सिखाता है, क्योंकि इसको लेकर कई टेररिस्ट भी कहते हैं हमने गीता से सीखा। जहां पर भगवान कहते हैं अर्जुन को युद्ध कर, मार सबको, तुम तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो टेररिस्ट भी कहता मैं तो केवल शरीर को मारता हूं, आत्मा तो अमर है ना, फिर मैं कहां से अपराधी हुआ? तर्क देने वाले बहुत सारे लोग अपने अपने रीति से तर्क देते हैं। फिर ये जो हिंसा की बात उसमें लिखी गई है, क्या वास्तव में ऐसा युद्ध हुआ था कि जितने इतने लोग मरे थे? शायद नहीं। ये युद्ध कोई और है, सत्य ज्ञान मिसिंग है कहीं पर, वो लिंक नहीं है वहां पर, उसे हमें ढूंढना है। और वो ही ढूंढने के लिए आप सब यहां आए हो, क्योंकि जिस स्थान पर इस समय आप बैठे हो ये संसार का पवित्रतम स्थान है। जिस हॉल में हम आप बैठे हैं ये वो हॉल है जहां पर स्वयं भगवान ने आकर गीता ज्ञान सुनाया है। यहां के प्रकंपनों में ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय वाइब्रेशंस समाये हुए हैं। अंग्रेजी में कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, अर्थात हिटलर ने जो कहा था अब भी आकाश में है, अर्थात गांधी ने जो कहा था अब भी आकाश में है, वो रिकॉर्ड के रूप में है। यहाँ तो स्वयं भगवान की वाणी चली है और ये जो हॉल है इसमें पवित्रता के प्रकंपन है। ये जो स्थान है जहां आप बैठे हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं है। इस स्थान में कुछ है जहां आते ही हृदय शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, इस संस्था की शुरुआत हुई है 1936 इन हैदराबाद, विवेकानंद की मृत्यु हुई 1902। उन्होंने कभी कहा था एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और परमात्मा संदेश पूरे विश्व को सुनाएगी। A day will come when Indian lady will clad white, will spread the message of God the world over. और वो जो महिला है, वो जो स्त्री है जिसने श्वेत वस्त्र धारण करके सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैला रही है, वो यही ब्रह्मा कुमारी है। जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है वो देवियां यही है, जिनमें ब्रह्मचर्य का तेज है। तो आकाशिक रिकॉर्ड इसके लिए यह अनुभव है कि इस हॉल में या इस परिसर में जो भी आता है अपने आप परिवर्तन होता है। एक उदाहरण है, एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, कमिश्नर, जिनको स्मोकिंग की आदत थी दो दो घंटे में, और एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने कहा आप शिविर में चलो, ऐसे ही किसी शिविर में। उन्होंने कहा चलूंगा, एक शर्त है, मुझे दो दो घंटे में स्मोकिंग करना है। तो बहन जी ने कहा कि जब आपको लगे स्मोकिंग करने की इच्छा मुझे बताना, दो नंबर गेट है उसके सामने, मैं आपको ले जाऊंगी, वहां जाके आप करना। तो वो आए, पहला दिन सुबह का सत्र ऐसे ही चला, नाश्ता किया और फिर बहन जी को कहा, तो बहन जी लेके गई स्मोकिंग करके आया। ऐसा दिन में कई बार किया, पहला दिन। दूसरा दिन सुबह अमृत वेला पहुंच गए मेडिटेशन करने, और ऐसा ही सत्र चला, और फिर इच्छा हुई पर थोड़ी सी शर्म भी आई, फिर सोचा थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूं। तो उस दिन एक या दो बार, तीसरा दिन इतनी ज्यादा शर्म आई कि कहा कि अब नहीं, और चौथा दिन होते होते संकल्प कर लिया इसी हॉल में बैठकर। आज से समाप्त, और उसके बाद हाथ भी नहीं लगाए। ये स्थान की शक्ति है, इसलिए जिसको लगता है मेरे जीवन में एक कमजोरी है, एक वीकनेस है, एक स्वभाव है जो बहुत दुख देता है, एक हैबिट है जो छूट नहीं दे रही है, एक एडिक्शन है, एक लत है जो सब कुछ करने के बाद नहीं जा रही है, इसी हॉल में यहीं पर बैठकर संकल्प करना है इतनी सारी आत्माओं के बीच, तो वो सिद्ध होगा। तो हम बात कर रहे थे ज्ञान की, ज्ञान की प्यास, ज्ञान की पिपासा, सत्य क्या है, ढूंढना है उसे, खोजना है उसे, और जब तक सत्य ना मिले चैन से नहीं बैठना है, रुकना नहीं है। बेचैन, स्पिरिचुअल डिस्कंटेंट, डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवीय असंतोष, उसके बाद एच हिंसा। तो ऐसा कोई हिंसक युद्ध नहीं हुआ था, जो युद्ध था वो अहिंसक था, और ये हमारे मन में ही है। दो फोर्सेस है जिनके बीच में ये युद्ध हो रहा है, आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियों के बीच। एक तरफ पांच पांडव है, दूसरी तरफ 100 कौरव है। सभी कौरवों के नाम आपने देखा है, दूस है, दुशासन, दुर्योधन, दुश्शला, अर्थात विकार। पांच पांडव हमारे ही अंदर है, जब हम धर्म के पथ पे हैं तो हम ही युधिष्ठिर हैं, हम जब शक्ति स्वरूप है तो हम ही भीम हैं, हम जब ज्ञान का अर्जन करते हैं तो हम ही अर्जुन हैं, जब हमारा आचरण दैवी संविधान उचित है तो हम नकुल हैं और सहदेव है, जब हम ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हैं वो सब हम ही हैं। और ये सब युद्ध यहाँ ही हो रहा है। मराठी में कहा जाता है, संत कहता है, दिवस रात्र अम्हा युद्धा सा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आनी मन। ये हमारे साथ युद्ध हो रहा है, ये सारा अंतर मन में युद्ध है। अंदर में दो शक्तियां हैं जो लड़ रही है, बाहर कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ यहां है अंदर। यही कुरुक्षेत्र की भूमि है। उसके बाद आय, आय अर्थात इनकार्नेशन, अवतारवाद या री इनकार्नेशन। यह सिद्धांत केवल गीता में आया है कि जिसमें भगवान कहता है जब जब धर्म की ग्लानी होगी, प्रभुदरी विविध शरीरा धर्म संत सुरधेनु हित। प्रभुदरी विविध, तुलसीदास ने कहा कि भगवान अवतार लेते हैं। क्या भगवान वास्तव में ऐसे अवतार लेते हैं? दिखाए हैं 10 अवतार है, एक एक अवतार अजीब गरीब है, कभी नरसिंह अवतार तो कभी वामन अवतार, और फिर बुद्ध को भी 9वां अवतार बताया, जिसके लिए बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। जो लोग बुद्धिस्ट है वो कहते हैं हमारे बुद्ध तुम्हारे विष्णु के अवतार बिल्कुल नहीं है, हमारे बुद्ध को उसमें क्यों डाल दिया, क्योंकि बुद्ध ने तो कभी भगवान के बारे में भी कुछ नहीं कहा, ही वॉज साइलेंट ऑन गॉड। तो सत्य क्या है फिर? और एक अवतार अभी आने वाला है, 10वां अवतार। अवतारवाद कितना सत्य है। इस्लाम अवतारवाद को नहीं मानता। इस कुरान कहती है कि कुरान तो नाजिल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद पैगंबर को, वो अभी भी वो अंतिम शास्त्र है, उसके बाद और कोई शास्त्र नहीं है। इसलिए तो जितने लोग थे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, इसको मानो नहीं तो मरो, इस जोर से धर्म की स्थापना हुई है, वो सत्य कैसे हो सकता है? अवतारवाद, क्या वास्तव में भगवान एक शरीर को धारण करते संसार में आते? शायद नहीं, सत्य कुछ और होगा। अगर ऐसा है तो सभी धर्मों में ऐसा क्यों नहीं है फिर? ये कॉन्सेप्ट ऑफ अवतारहुड, अवतारवाद केवल गीता में पहली बार आया है। शायद सत्य कुछ और है, ढूंढो। और पुनर्जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, बार बार आत्मा पुनर्जन्म लेती है, परंतु उसमें फिर लिखा है प्राणियों की श्रेणी में हम जाते हैं। क्या ये सत्य है? शायद नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे याद आया पिछले जन्म में मैं शेर था? हर एक को याद आया मैं कोई स्त्री थी या पुरुष था? किसी को याद आया आज तक कि मैं बकरी थी? किसी को याद नहीं आया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सोल का, ट्रांसमाइग्रेशन इनटू एनिमल स्पीसीज, कितना सत्य है, सोचने की बात है। उसके बाद है जे जर्नी। गीता, संपूर्ण गीता एक यात्रा है जहां पर अर्जुन और कृष्ण का संवाद दिखाया हुआ है। वास्तव में वो अर्जुन हम आत्माएं हैं और वो रथ पर बैठा भगवान है जो हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। पर गीता में ऐसे कितने सारे प्रश्न अर्जुन ने किए हैं और भगवान उत्तर दे रहे, पर बहुत सारे उत्तर उसमें से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उसमें पैराडॉक्स है। मया तद्मिदम सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मत्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थित। ये अर्जुन, इस संसार में चराचर में मैं समाया हुआ हूं और कहीं एक जगह है कि मैं उसमें हूं ही नहीं। दो अपोजिंग स्टेटमेंट एक साथ आ रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतान हृदयाशु तिष्ठति अर्जुन, ईश्वर हरेक के हृदय में बैठा हुआ है, और कहीं पर भगवान कहता है मैं इस संसार में नहीं हूं, मैं इससे अलिप्त हूं। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कितने वो सत्य है, ढूंढने की बात है, सोचने की बात है। तो यात्रा है, और गीता कोई एक शास्त्र केवल नहीं है, वास्तविक गीता क्या है वो आपको यहीं अगले एक दो दिन में धीरे धीरे समझ में आएगा कि गीता वास्तव में है क्या। जो जीवन को परिवर्तन ना करे वो गीता नहीं हो सकती। गीता अर्थात ऐसा शुद्ध ज्ञान कि जिसके संपर्क में आते ही चेतना बदल जाए। उसके बाद में के अर्थात कर्म फिलॉसफी, इस फिलॉसफी का वर्णन गीता में कई बार आया है। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, ये उसका निचोड़ है। आज की जितनी कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट है उसमें यह सिखाया जाता है कि कंपनी को अगर आगे बढ़ना है तो फ्रूट की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, बस करते जाओ, अपने आप प्रोडक्ट बिकते जाएगा, ऐसे सिखाया जाता है कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस में। परंतु कर्मयोग का ये जो सिद्धांत है ये भी अधूरा है, क्योंकि संसार में निष्काम कर्म करने वाले कितने सारे लोग हैं, पर क्या वास्तव में वो निष्काम है? अंदर में स्वार्थ है कुछ ना कुछ। कोई निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ करता है पर अंदर में रहता है कि मेरा भी नाम हो जाए, मेरा भी फोटो आ जाए। उदाहरण, सब जगह भारत में मंदिर है लक्ष्मी नारायण के, नाम है बिरला टेम्पल्स। क्या नाम है? बिरला टेम्पल्स। मंदिर किसका है? लक्ष्मी नारायण का। हंसी के रूप में कहते हैं बिरला भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने पूछा क्या पुण्य किया, वो कहता है मैंने आपके बहुत सारे मंदिर बनाए, भगवान कहता है नाम क्या दिया? बिरला टेम्पल्स। पुण्य पूरे हो रहे हैं। क्या वास्तव में कोई निष्काम हो सकता है संसार में? तो इस कर्म फिलॉसफी को गहराई से समझने के लिए इस ज्ञान को समझना होगा, तभी यह समझ में आएगा। उसके बाद में एल, लाइज। लाइज अर्थात झूठ। कहा जाता है शास्त्रों में उतना ही सत्य है जितना आटे में नमक। हर चीज को तोल के लो, हर चीज को नहीं लिया जा सकता है। तर्क बुद्धि का प्रयोग करो, लॉजिक, लॉजिकल माइंड, थिंकिंग माइंड, साइंटिफिक माइंड। क्या वास्तव में इसको लिया जाए? क्या वास्तव में ऐसा है? क्या बस चुपचाप स्वीकार कर ले? परंपरा। क्यों कर रहे हैं, क्यों बार रहे हैं बिल्ली को? परंपरा। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, कुछ भी स्वीकार नहीं करना है जब तक खुद नहीं सर्च करो, उसका रिसर्च करना है। झूठ क्या है? ढूंढना है। सत्य क्या है? ढूंढना है। उसके बाद एम, माया। अब माया एक ऐसा शब्द है कि हमने कई बार सुना यह संसार की मोह माया, कितनी बार सुना है, पर माया है क्या? भक्ति कहती है माया भगवान की शक्ति है, वेदांत कहता है माया नाम और रूप है, सांख्य दर्शन करता कहता है माया ये प्रकृति है, कोई लोग कहते हैं ये धन माया है, कोई कहता है कामिनी कांचन माया है। माया है क्या आखिर? माया का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो भी हमें तभी पता चलेगा जब हम इस ज्ञान की गहराई में जाएंगे। अगर धन माया है तो जिनके पास धन नहीं है वो माया से मुक्त होने चाहिए, पर वो भी तो दुखी है। अगर स्त्री माया है तो जो स्त्री से मुक्त है वो भी दुखी सुखी होना चाहिए, पर वो भी दुखी है। द्वारम किमे कम नरकस्य नारी कहा है शास्त्रों में, जंगलों में जाके बैठ गए स्त्रियों से दूर, वहां पर भी तो गिरे, वहां पर भी कहां आध्यात्मिक उन्नति हो पाई उनकी, वहां पर भी तो दुखी रहे। माया क्या है? और माया का कॉन्सेप्ट गीता में आया है जिसमें भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया के वश को वश में करके अवतरित होता हूं। वास्तव में ये सब क्या है? व्हाट इज इट? प्रश्न आने चाहिए मन में। कोई भी नई फिलॉसफी को सुनने के बाद तुरंत उसको जज करके, जैसे कोई आ जाए मेरे पास और कहे कि तुम्हारे भविष्य में ये लिखा है, क्या मैं मान लूं? ना, आई विल नॉट। उसके बाद में निर्वाण, एन फॉर निर्वाण अर्थात मोक्ष। क्या वास्तव में मोक्ष मिल सकता है? मोक्ष अर्थात परमानेंट मुक्ति, इसको भी सोचने की आवश्यकता है। क्या वास्तव में ऐसा कोई शब्द है मुक्ति, निर्वाण, जिसमें आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए? ओ अपोजिशन, इस गीता को अपोज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहां तक कि 2010 में रशिया में बैन कर दिया गया था गीता को, आपने सुना होगा। पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी इसकी, सब एकत्र हो गए थे इसके लिए। क्यों अपोज किया? उनका कहना था कि कृष्ण जो फिलॉसफी बता रहा है वो खुद उसका पालन नहीं कर रहा है, और बहुत सारी बातें रखी थी साइंटिफिक तरीके से रखी थी कि आप गीता को इतना साइंटिफिक कहते हो पर उसमें जो बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है जो व्यवहारिक ही नहीं है, जो गलत है, कुछ कुछ श्लोक रिपीट हो रहे हैं, और जैसे कहा वो श्लोक ऑलरेडी उपनिषद में कहां से आ गए? अगर वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सुनाई गई थी तो पी पैराडॉक्स, पैराडॉक्स अर्थात विरोधाभास है उसमें बहुत सारा। एक एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय तक ठीक है, तीसरा अध्याय फिर 18 अध्याय तक जो बीच के अध्याय है उनकी अगर टीका टिप्पणियां देखो तो इतनी भिन्नता है संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी, श्रीधर स्वामी की भगवत गीता, माधवाचार्य की, रामानुजाचार्य की, शंकराचार्य की, सब अलग 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 है। क्यू क्वेश्चंस बाय अर्जुन, अर्जुन ने क्या जितने प्रश्न पूछे क्या सबके उत्तर भगवान ने दिए? शायद नहीं। और एक बात, अर्जुन ने गीता सुनी, सारी गीता सुनी, ठीक है, और नष्टो मोह हो गया, युद्ध किया, युद्ध के बाद अर्जुन के जीवन में इतने प्रसंग आए तब वो बहुत दुखी हुआ, ऐसा क्यों? फिर उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था, फिर बार बार दुखी क्यों हुआ वो? ऐसा भी दिखाया हुआ है। बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि जिस ज्ञान को हम पढ़ रहे, मान रहे, आचार संहिता समझ रहे, हाउ मच राइट इज इट, इट इज, और आई नीड टू स्टॉप, या मुझे रुकना चाहिए। और सबसे लास्ट है आर, आर अर्थात रिलीजन या राजयोग, धर्म की स्थापना हुई। भगवान कहता है जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं। यह गीता का ज्ञान दिया गया पर धर्म की तो स्थापना हुई नहीं, संसार तो और पतन की गर्त में गिरता गया, और नीचे आता गया। तो ये ऐसी 18 बातें हैं गीता के बारे में जो प्रश्न खड़े करती है मन में, क्या वास्तव में यह है? केवल अब यह गीता की बात नहीं रही, किसी भी शास्त्र को ले लो, टेक बाइबल, टेक कुरान, अहुरा मास्टर, कोई भी धर्म ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, क्या आज जो अवेलेबल है वो वैसा ही है जब वो लिखा गया था? इसकी क्या गारंटी है कि बीच में किसी ने अपने अपनी बात नहीं डाली? जैसे मीरा के लिए कहते हैं कि उसके बहुत सारे भजन मीरा के हैं ही नहीं, बाद के जो भक्त आए उन्होंने भजन बनाया और उसमें मीरा का नाम डाला, ऐसा भी कहा जाता है। तो कब तक, कहां तक माने? हाँ वो दूसरी बात है, एक भक्त जो व्यक्ति होता है उसको ये सब चीजों से कोई नहीं, वो बस श्रद्धा से जीता है, पर इसी श्रद्धा से अंधश्रद्धा बन गई है और संसार में लूट मचा दी और कितने धोखे हुए, इसलिए अब धोखा नहीं खाना है। एक फाइनल निर्णय लेना है जीवन में, हजारों संस्थाएं हैं, हम व्यक्तिगत रूप से हम अपना बताएं तो इस संसार की शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जहां हम नहीं गए। श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, माता अमृतानंदमय, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, योगादा सत्संग सोसाइटी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ईस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, संसार की ऐसी कोई फिलॉसफी शायद ही रही होगी। हमको याद है जब हम 21 साल के थे, MBBS पूरा हो गया और फिर ईश्वर की खोज, वो है कौन, वो कहां है, इस खोज ने हमको यहां वहां भटकाया, इतना भटकाया, इतना भटकाया कि संसार की शायद ऐसी कोई, अरविंदो, रमन महर्षि से लेकर सेंट बर्नार्ड, सेंट जॉन, सेंट रेबिया, सब 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 जिस जिस पर हाथ रखा वो पढ़ते गए, समझते गए, पढ़ते गए, समझते गए। हिंदू फिलॉसफी को छोड़ा, चर्च में गए कई महीने तक, 3 मास केवल चर्च। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, इस्लाम में क्या है, बौद्धिज्म में क्या है, जैन फिलॉसफी में क्या है, विपश्यना में गए, क्रिया योग कहां कहां, एक एक जगह गए। ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा इस संसार का, ऐसा कोई धर्म नहीं छोड़ा, ऐसी कोई किताब नहीं छोड़ी। और एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, एक तरफ धर्म की खोज, एक तरफ पेशेंट, दूसरी तरफ भगवान। सत्य क्या है वो खोज, वो प्यास। और ऐसी खोज करते 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 एक समय हमारे जीवन में ऐसा आया जब हाथ में MBBS का रिजल्ट, जिसमें हम टॉपर थे, और मन में वैराग्य, ऐसा वैराग्य कि हमने सोचा ये मेडिकल हमारे काम का नहीं, इसको हम छोड़ रहे हैं। क्योंकि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, तो हम ये सब करके क्या करें, डॉक्टर बने या पेशेंट की सेवा करें, ये फिर भी माया ही है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म कहां है, वो खोज, वो प्यास। और फिर किसी ने कहा, तुमको जो करना है वो करो। हमने सोच लिया था हमें इस संसार को छोड़ना है, इस संसार का त्याग करना है, संन्यास। बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ी हलचल। हमारे घर में हमको समझाने के लिए लगभग 150 रिश्तेदार आए, तुझा है तुझपाशी, कहां जा रहा है, इधर ही रुक, यही सत्य है। परंतु मन ढूंढ रहा था, खोज रहा था, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वो है कहां, वो है कहां, उसका रूप क्या है, क्या वो कृष्ण है, क्या वो राम है, क्या वो जीसस क्राइस्ट है, वो किस धर्म में है, कहां वो रहता है, क्या उसका स्वरूप है, सत्य ज्ञान क्या है। और वो खोज करते 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 एक दिन इसी हॉल में हम पहुंचे, 30 नवंबर। इस संस्था में हम किसी को नहीं जानते थे, हमको केवल इतना कहा गया था कि हमने तो सोचा था यहां आना है, बाबा मिलन अवतरण का दिन है वो करना है और यहां से फिर चले जाना है। वो क्या है, वो कौन है, वो कौन आने वाला है, ब्रह्मा कुमारी क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके शास्त्र क्या है, वो कुछ पता नहीं। हमको केवल एक ही चीज पता थी, भगवान को पाना है बस। और सारा संसार छोड़ दिया, घर में भयंकर हंगामा, ये क्या कर रहा है। और ऐसी विक्षिप्त दशा में इसी हॉल में आकर बैठे थे। हमको लगता है कि संस्था का कोई बहुत सीनियर भी हमको आके ये ज्ञान समझाता तो शायद हम न मानते। इसी हॉल में बैठे बैठे 3 बजे बैठे, रात को 11 बजे तक, और आंखों से अश्रु धारा है। और जो शक्ति यहां पर आई थी, उस शक्ति ने क्या बोला वो कुछ भी सुनाई नहीं आया, केवल इतनी आवाज। इस स्टेज पर हमको वो सब दिख रहा था, कहीं गुरु नानक, तो कहीं जीसस क्राइस्ट, तो कभी मोहम्मद, और अव्यक्त बाप दादा स्वयं भगवान जो यहां बैठे थे, और वो प्रकाश, हमसे कह रहा था कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। तब जाके हम रुके, नहीं तो रुकने वाले नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी दशा थी कि यदि भगवान न मिला तो ये शरीर छोड़ देंगे। तो ये ज्ञान अनुभव है, किसी के कहने की वजह से नहीं, खुद अनुभव करना है, खुद समझना है, खुद आगे बढ़ना है, खुद स्टडी करना है और जानना है सत्य गीता क्या है। और जब यहां आए तो हम तो ये भी भूल गए थे, जब ऊपर लेके गए साइट सीइंग के लिए तो लोगों ने कहा, बहनों ने कहा, ये हमारा हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल। तब हमको याद आया हम डॉक्टर हैं, और हमने कहा अभी के अभी हमको ज्वाइन करना है, तो वो कोई दूसरी स्टोरी है। तो कहने का भाव गीता। अब हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे कि सत्य गीता क्या है। सबसे पहली पॉइंट थी ऑथर। गीता क्या कृष्ण ने सुनाई, क्या किसी देहधारी ने सुनाई, किसी रथ पर बैठकर सुनाई और किसी युद्ध की भूमि पर सुनाई? नहीं, गीता अब भगवान ने सुनाई है और वो भगवान स्वयं निराकार है। वो एक शरीर का आधार लेता है। अवजानन्ति माम मुड़ा मानुषी तम आश्रित। हे अर्जुन सुन, वो मूर्ख है, अवजानन्ति, वो मुझे नहीं जानते जब मैं मनुष्य तन का आधार लेता हूं। भगवान निराकार है और वो खुद ही बता सकता है कि वो क्या है, ये कोई बता नहीं सकता। गॉड इज अ मिस्ट्री। गॉड एक ऐसी मिस्ट्री है कि केवल भगवान खुद ही बता सकता है कि मैं ऐसा ऐसा हूं। कोई शास्त्र ये नहीं बता सकता कि भगवान है। अगर कृष्ण भगवान है तो हजार आर्गुमेंट है उसके विरुद्ध कि वो भगवान है नहीं। जिसका जन्म इस्लाम में हुआ वो क्यों मानने लगा कृष्ण को भगवान? कभी नहीं मानेगा। भगवान वो जो सर्वमान्य हो, भगवान वो जो निराकार हो, भगवान वो जो सर्वशक्तिवान हो, भगवान वो जो सर्वज्ञ हो। सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। कुरान में लिखा है चैप्टर नंबर 112, 112, सूरा नंबर 1, 2, 3, 4, अल्लाह कौन है इसकी परिभाषा। अल्लाह वो है जो उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अल्लाह वो है जिसका कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं। ही बिगेट्स नॉट, ही इज नॉट बिगॉटन, ही इज अल्लाह, प्रेज बी अनटू हिम। अल्लाह वो है जिसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। वो अद्वितीय है, अतुल है। अगर ये क्राइटेरिया फिल होते हैं तो ही किसी को भगवान कहा जा सकता है, अदरवाइज नॉट। इसलिए तो उनको ये क्राइटेरिया दिखते नहीं। भारत में आए, इतने सारे मंदिर, सारे मंदिर तोड़ करना चालू कर दिया। ये क्या कर रहे हो, मूर्ति पूजा? कुफ्र है ये, काफिर, मार दो। इस हिसाब से तो कोई भी देहधारी कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता, जिसका शरीर है, कोई भी नहीं। तो परमात्मा निराकार है, ऑथर जो है, और वो किसी तन में आता है और ज्ञान सुनाता है, और वो जो ज्ञान सुनाता है उसे गीता कहा जाता है, और वो कि अब हो रहा है। दूसरा बी, बैकग्राउंड। वो बैकग्राउंड अब है, जबकि कलयुग का अंत समय है, जबकि पापाचार, भ्रष्टाचार, विकार ही विकार है, हवाओं में विकार है। कोई भी टीवी चैनल खोलो, कोई भी किताब, सारे किताब, सारे टीवी चैनल एक शरीर के इर्द गिर्द मंडरा रहे, देह और देह की वासनाएं और देह के विकार। हर मन में काम छिपा हुआ है और बातें धर्म की और नीति की करते हैं। इससे अधिक पतन क्या हो सकता है संसार का जो अब है। अनित्यम असुखम लोकम, जगह जगह पर वृद्धाश्रम में लोग वहां रहते हैं, उसी शहर में जिस शहर में उनके बेटे का घर है। कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जब ऐसे पतन का समय आता है। परित्राणाय साधुनाथ, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान अवतरित होते हैं तब, और वो अवतरित अब हो चुका है, इसलिए उसको जानना है। सी कैरेक्टर्स, तुम ही दुर्योधन हो और तुम ही शकुनी, सब कुछ इधर ही चल रहा है खेल। हम ही द्रौपदी है और हम ही दुशासन, सारा खेल इधर ही चल रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहां हो रहा है। मैं ही अर्जुन हूं तो मैं ही कर्ण भी हूं, विवश परवश फंसा हुआ, मेरे ही ये सारे रूप है। सारा महाभारत यहां चालू है, मैं ही युधिष्ठिर, मैं ही दुर्योधन, मैं ही धृतराष्ट्र, मैं ही गांधारी हूं, सब मेरे ही रूप है ये। बाहर कुछ भी कभी ना था ना कभी होगा, जो कुछ चल रहा है यहां चल रहा है। ऐसी कुरुक्षेत्र की ये भूमि है मन, वहां सब कुछ हो रहा है, और इस मन को गीता ज्ञान की आवश्यकता है, जो कि भगवान अब सुना रहे। ये बैकग्राउंड, सी कैरेक्टर्स, ये सारे कैरेक्टर्स यही है। डी डेट, अब गीता कब सुनाई गई, जैसे कहा शुरुआत में कई सारे फिगर्स आते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न, अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंकड़े दिए कब के। वास्तव में गीता कोई द्वापर में नहीं सुनाई गई, गीता अब कलयुग के अंत में सुनाई जाती है, जिसके बाद एक महाविनाश होता है और फिर नए युग की स्थापना होती है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, फिरदौस कहते हैं, बहिष्ट कहते हैं, वो आने वाला है। ये संसार ज्यादा समय नहीं चलने वाला, और जिस तरह की स्थितियां है वर्तमान में, कभी भी कोई भी बटन दबा दे तीसरा महायुद्ध हो जाएगा। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फोर्थ वर्ल्ड वॉर, दो तो हो चुके हैं, दूसरा महाभयंकर था। आइंस्टाइन से पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फोर्थ वर्ल्ड वॉर, वो कहता है वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तीसरे में ही दुनिया खत्म हो जाएगी। और वर्तमान समय तो ऐसी स्थितियां हैं संसार में, एक तरफ ग्रह युद्ध होंगे, दूसरी तरफ न्यूक्लियर वेपन्स, ओजोन लेयर, मराइन, मीथेन निकलेगा, बहुत सारे एस्टेरॉइड, फॉरेन बॉडीज। साइंटिस्ट लोग तो देख रहे हैं कि कब होगा, कभी भी हो सकता है वो, ये पूरी धरती खत्म हो जाएगी। परंतु ये वास्तव में विनाश नहीं है, एक नए युग की स्थापना होगी, और वही करने भगवान इस समय आया है। सीख हम बीते युगों से नए युग की करे स्थापना, महाभारत सीरियल में गीत था, नए युग की करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। वो नया युग अब आने वाला है, ये पुराना खत्म होने वाला है। धरती बूढ़ी हो चुकी है, धरती थक गई है, कितना बोझ वहन करेगी। किसी ने मैसेज भेजा था दिवाली में, इस दिवाली में कोई भी फटाके ना उड़ाए, क्योंकि धरती को अपने बोझ क्या कम है, पहले ही उसकी इतनी समस्या है। हमने प्रकृति को एक्सप्लॉइट किया है, शोषण किया है इस प्रकृति का, पर प्रकृति बदला लेगी। अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों में भी होटल बना के रख लिए है लोगों ने, वो काम पीड़ा के केंद्र बन गए, और वहां पर भी इसलिए तो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। उत्तराखंड 2013, मनुष्य ने सागर को सुखाकर जमीन में बिल्डिंग बनाई है, ये सागर छोड़ेगा क्या, एक दिन उछल खाएगा और बदला लेगा। प्रकृति क्रुद्ध है, क्रोध में है मनुष्य के विरुद्ध में, इसलिए ये संसार और नहीं चलने वाला। ये संसार परिवर्तन होगा और नया युग आएगा, और वो जो युग होगा वो सतयुग होगा, वो स्वर्णिम युग होगा, द पैराडाइज फिर आएगा, जिसकी कल्पना सभी धर्मों में की है कहीं ना कहीं, वो जन्नत फिर आएगी। ई और फिर एफ, कुरुक्षेत्र जैसे कहा यही है। एच, हिंसा, यह हिंसक युद्ध था ही नहीं, यह हमारा ही विकारों के विरुद्ध युद्ध है, यही कुरुक्षेत्र है, यही महाभारत है। पांच विकार एक तरफ, हम एक तरफ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, कोई ना कोई विकार आते रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा जीवन संपूर्ण पावन हो जाए, संपूर्ण शुद्ध हो जाए? आज यदि जेल में जाओ तो जितने जेल है उसमें जो भी अपराधी है वो बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग थे, है, पर क्यों पाप कर लिया, क्यों दुष्कर्म किया? वो कहते हैं वो 10 मिनट में पता नहीं क्या हो गया, ऐसी वासना जगी और पाप कर लिया। वो पता नहीं क्रोध ऐसा आ गया कि मार दिया किसी को, बाकी वो बुरा व्यक्ति नहीं था, अभी पश्चाताप कर रहा है जेल में बैठकर। ये विकार जलाते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा के लिए कहा है, आत्मा अग्नि से नहीं जलती, नहीं वायु से सूखती है, परंतु ये जो विकार है काम, आत्मा को जलाता है, क्रोध आत्मा को जलाता है। क्या हम भी इसी क्रोध में जल रहे हैं? यहां आने का एकमात्र इस संस्था का लक्ष्य है उस नए युग की स्थापना करना, और जो गीता का ज्ञान भगवान बैठ अभी दे रहा है वही सत्य ज्ञान है, ना कि वो ज्ञान जो किसी शास्त्र में लिखा है, उसमें तो थोड़ा बहुत छुटपुट यहां वहां सत्य है जो कि दूषित हो गया है कालांतर में। और भगवान अब गीता सुना रहे हैं, अब गीता ज्ञान दे रहे हैं, और यही सत्य ज्ञान है, और इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है परिवर्तन। आपने इस कैंपस में आकर देखा होगा कितने सारे लोग हैं यहां पर, पता चल रहा है नाश्ता कब बन रहा है, भोजन कब बन रहा है, चाय कब बन रही है, पता चल रहा है कैसे हो रहा है ये, इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, एक साथ तीन तीन कॉन्फ्रेंस चालू है, कौन कर रहा है ये? क्या ये मनुष्य का कार्य है? नो, ये परमात्म कार्य यहां पर चालू है, ये किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। इतने सारे लोग यहां पर एकत्र हुए, वन वन की काठी, कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, यहां पता नहीं चलता है। हमको याद है हमारे मामा पुलिस कमिश्नर, वो आए थे यहां पर घूमने साइट सीइंग के लिए, और वो ऊपर पांडव भवन में थे, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी रुकी हुई है और बस का जो ड्राइवर है बाहर निकलकर बस को ठीक कर रहा है, साफ कर रहा है। उन्होंने कहा ऐसा हमारे डिपार्टमेंट में कभी नहीं होता, हर हमेशा हमको ड्राइवर को बोलना पड़ता है गाड़ी साफ कर, यहां पे मैं देख रहा हूं हर कार अपने आप हो रहे, किसी को कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ना कोई इंचार्ज दिखाई देता है, ना उसका कोई सर्वेंट दिखाई देता है, यहां सभी इंचार्ज है। और ये जो ज्ञान यहां जो आप सुन रहे हैं, केवल जो यहां बैठकर इस सीट पर बैठकर जो स्पीकर सुना रहे वही ज्ञान नहीं है। अगर सत्य ज्ञान ढूंढना है, पाना है, तो किचन में जाओ, वहां कोई एक भोली भाली माता है जिसको बोलना भी नहीं आता है, उसको हिंदी भी नहीं आता, उसको पूछो तुम यहां कैसे आई, वो ऐसा ज्ञान का अनुभव सुनाएगी कि आंखों से आंसू आ जाएंगे और यहां का भाषण भूल जाएंगे। वो वास्तव में सत्य भाषण है, वही सत्य स्पीच है, क्योंकि वो जीवन बता रही है। उसके पास कोई थियरी नहीं है, उसको तो ये भी नहीं पता कि यहां शिविर चालू है, उसके पास तो प्रेम है बस। हम देखते हैं ओपीडी में, हमारी ओपीडी में ऊपर कितनी माताएं आती है, यहां पर एक एक मास की सेवा में आती है, उनके पास कितना पैसा होता है, टिकट का पैसा जो लेके आई कॉमन बुगी में बैठ के, अब जाने के लिए बस 120 रुपए है, अगर बीच में बुखार आती है कहती है बस बाबा देख लेगा, इतना समर्पण भाव। कैसे ये लोग भगवान के बन गए, आश्चर्य है। नेपाल से एक भाई आता है, अभी इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, कुमार है, ब्रह्मचारी, उसको आदत थी चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, सब कुछ, बड़े बड़े बाल, यहां पर टैटू, बाइक, और घूमते रहते थे। रात को सोने का समय होता था सुबह 6 बजे, रात भर चरस, गांजा, इतना हेवी एडिक्शन, उसके जेब में 10-10 पैकेट रहते थे गांजा के, और घर बहुत समृद्ध, घर में कोई कमी नहीं, किसी विवाद की कमी नहीं, कोई पूछने वाला, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, जैसे गुंडा उस टाइप का वो। और जैसे ही एक दिन ब्रह्मा कुमारी बहन उसके संपर्क में आई, कुछ कुछ हलचल हुई, लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सेंटर पर बुलाया, सेंटर गया, फिर घर वापस आया और अनुभव में लिखा था एक रात, पूरी रात भर बेड पर बैठा हुआ रोता रहा कि मेरे से कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, पर कैसे छोड़ू। लोगों को तो डी एडिक्शन रिहैब केंद्र में 6-6 मास रुकाते हैं, फिर भी छूटता नहीं है दारू बीड़ी। ये तो इतना हेवी था सब कुछ इसका, रात भर रोता रहा। और फिर दूसरे दिन उसके जेब में 10 पैकेट थे, 10-12 पैकेट गांजा के, और उसने संकल्प किया इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा, जेब में ही रखूंगा पर हाथ नहीं लगाऊंगा। जेब में ही थे वो सारे दिन भर। और उसके बाद में ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो पूरा जीवन ही उसका बदल गया। आज उसको अगर देखो, आज अगर उसको देखो तो पता ही नहीं चलता है कि इसका पास्ट ऐसा था, कैसे बदल दिया। हम देखते हैं लोग छोड़ना चाहते हैं बीड़ी दारू, पर छूटती नहीं है, 6-6 मास रहकर आते हैं फिर भी नहीं छूटती। और ये व्यक्ति सामने ऐसा है कि एक धक से छोड़ दिया, बिना कोई विड्रॉल सिम्टम्स, कोई तलब नहीं, कोई अर्ज नहीं खाने की पीने की वापस। ये कैसे हो गया? ये हुआ इस ज्ञान के आधार से। ये ज्ञान, ये प्रभु प्रेम, ये सत्य ज्ञान। और अपने अनुभव से हम आप सबको कहेंगे, आप जहां आए हो, दिस इज द लास्ट स्टेशन, ये लास्ट स्टेशन, इसके आगे और कोई स्टेशन नहीं। तो सभी ने यहां पर बहुत अनुभव किए होंगे, बहुत अनुभव और करने बाकी है। और जैसे कहा, संकल्प करना है, तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे एक बार, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ नीचे। एक 5 मिनट शक्तिशाली योग का प्रयोग करेंगे, जो जहां है वहीं बैठ जाए, सभा में संपूर्ण मौन। शरीर की सारी हलचल समाप्त। दोनों पैर रिलैक्स, रुगुटी तख्त पर बैठी, चेतना की वह अव्यक्त किरण मैं हूं। मन संपूर्ण शांत, मैं शांत स्वरूप आत्मा। मुझ आत्मा से शांति की तरंगे सर्वत्र फैल रही है। संपूर्ण वायुमंडल शांत, अंग अंग शांत शिथिल। कैसा मेरा भाग्य है, किस जन का पुण्य उदय हुआ है, स्वयं भगवान के अवतरण भूमि पर मैं आत्मा आ गई। भाग्य ने करवट बदली है। गीता का संपूर्ण सत्य ज्ञान स्वयं भगवान मुझे बैठ सुना रहा है। प्रभु मिलन की प्यास जन जन की अब मिटी है। जिसे खोजते थे, जिसे तलाशते थे, शास्त्रों में गुरुओं की शरण जाते थे, तीर्थ यात्राएं की, कुछ न मिला। हे प्रभु, आज तूने स्वयं मुझे अपने दर पर बुलाया है। किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करूं? जीवन के सारे दुख जैसे मिट गए। तुझे पाने की जो कामना थी वो पूर्ण हुई और आज से एक नए जीवन की शुरुआत, एक नया उमंग, एक नया उत्साह, एक नई शक्ति, एक नई खोज। बाबा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मैं आत्मा जो भटक गई थी वापस तुझ तक आ गई। अब तुम ही सर्वस्व हो, जीवन हो। तेरी श्रीमती सर्वस्व है। इस सभा में बैठकर ये संकल्प करती हूं कि आज के बाद का जीवन कुछ और होगा, अलौकिक होगा। और इसी संकल्प से आज के इस दिन की भी शुरुआत। ओम शांति।
विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में। बिन तेरे जाऊं कहाँ, बिन तेरे जाऊं कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। अपनी पीड़ा में मैं अपने दुख और गम में, दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में मैं अपने दुख और गम में। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु। अधूरा मैं तेरे बिना, अधूरा मैं तेरे बिना, कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।